ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரபிரம்மா பரமேஸ்வர் உன்கே சேம கிருபாஷே ஹம் லோக் ऋग्वेद या ऐतरेय उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे थे. सबसे पहले उस परमात्मा ने एक क्षण किया. क्यों एक क्षण किया? सृष्टि करने के लिए. क्योंकि परमात्मा का दो रूप माना है. एक होने पर भी उस परमात्मा का दो रूप से स्वीकार किया, क्योंकि एक तो स्वरूप है उसका सूक्ष्म माना है. वो तो दृष्टा है, अत्यंत सूक्ष्म है. सूक्ष्म क्यों है? जिनमें जैसा जैसा गुण अधिक हो जाता है वैसा वैसा स्थूल माना जाता है, और जैसा जैसा गुण है घटते जाता है सूक्ष्म मानते. जैसा मान लीजिए पृथ्वी में जो है पांचों गुण है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, पांचों शब्द में उपलब्ध होता है. तो पांचों उपलब्ध होने के कारण पृथ्वी को स्थूल माना है. पृथ्वी के अपेक्षा आप आगे जाइए जल में, और वहां गंध नहीं रहेगा, बाकी तो चार गुण रहेगा. इसलिए पृथ्वी के अपेक्षा जल सूक्ष्म की ओर गया. और जल से भी आगे जाइए अग्नि में, देखिए वहां गंध भी नहीं रहेगा, रस भी नहीं रहेगा. शायद होगा अग्नि में रस, चाक के देखने से मालूम पड़ेगा रस है क्या नहीं करके. तो इसलिए अग्नि में गंध भी नहीं है, रस भी नहीं. तो अग्नि जलती है दुर्गंध आता है, वो पृथ्वी को लेकर. तो इसलिए अग्नि में तीन ही गुण रहे, तो जल के अपेक्षा वो सूक्ष्म हो गया. वायु में देखिए, वायु में रूप भी नहीं है, केवल स्पर्श और शब्द रहा, इसलिए हमारे नेत्र का विषय नहीं बना वो. और उससे भी आगे जाइए आकाश में, आकाश में केवल एक शब्द गुण है, इसलिए सूक्ष्म हो गया. जैसा जैसा गुणों की जो घटोत्तरी हो रही कम हो रही सूक्ष्म माना जाता है. और परमात्मा में तो कोई भी गुण नहीं है, निर्गुण निराकार बता रहे, इसलिए वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है. उस सूक्ष्म तत्व को जानना कठिन होता है, क्योंकि हमारा मन का स्वभाव है स्थूल पदार्थ को ग्रहण करके, उसकी आदत बनी है. तो इसलिए सूक्ष्म तत्व को ओर जाने के लिए उसको भारी पड़ता है. इसलिए शास्त्र ने उसी परमात्मा का एक दूसरा रूप भी दिखा दिया, ये स्थूल रूप दिखा दिया. जो साधक इन स्थूल रूपों को आश्रय करके धीरे धीरे परमात्मा का जो वास्तव स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, वहां पहुंचे, उस स्थूल स्वरूप को भी छह भाग में विभक्त किया है. तो छह भाग में विभक्त करके उस छह में आप आश्रय किसी ना किसी एक को आश्रय करके सूक्ष्म के ओर जा सकते हैं। इसलिए यहां सृष्टि भी एक कारण है, इसलिए सृष्टि बना रहे। ये जो स्थूल स्वरूप है परमात्मा का छह बता रहे, वो परमात्मा का एक प्रकार से शरीर भी है। उनको आलंबन करके अर्थात उसको आश्रय करके जो सूक्ष्म तत्व है, अपना ही स्वरूप है, वहां हम जा सकते हैं अर्थात उसका अनुभव कर सकते। तो स्थूल में सबसे पहले माना जो अभी हम विचार किया था, ये भुवन, चतुर्दश भुवन अर्थात पहले चार लोकों को सृष्टि किया था परमात्मा ने, अंब से लेकर, अंब है, मरीची है, मरा है, आपा है, ये चार लोकों का उपलक्षण 14 लोक, ये 14 भुवन माना जाता है। ये परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। स्थूल स्वरूप में उसके अंदर वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, प्रज्ञान रूप से विद्यमान है, आगे बताएंगे। इसलिए शरीर है, इसको आश्रय करके आप उस तत्व की ओर जा सकते हैं। स्थूल में प्रथम माना है भुवन, 14 भुवन, और दूसरा है परमात्मा का दूसरा स्थूल रूप विग्रह। मंदिर में हम मूर्ति देखते हैं, विग्रह देखते, चाहे तो भगवान विष्णु का हो, दुर्गा का हो, गणेश का हो, ये विग्रह भी परमात्मा का एक स्थूल स्वरूप माना है। ये स्थूल स्वरूप क्यों दिया शास्त्र और महापुरुषों ने? इसलिए जिनकी बुद्धि स्थूल है, अभी तक सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य नहीं, मोटी बुद्धि, जैसा पंजाब में एक वेदांत ज्यादा चलता है, बहुत पंजाब में वेदांत का विचार बहुत होता है। तो एक संत बड़ा रहे थे और पूछते, क्या समझ गए माए? तो उन्होंने कहा, महाराज आपकी मोटी बुद्धि है, मेरी तो सूक्ष्म बुद्धि है, मोटे बुद्धि ने जो बताया हुआ सूक्ष्म बुद्धि कैसा पकड़ सकते? तो उनका तात्पर्य ये नहीं, मोटी का मतलब बड़ी बुद्धि, ये तात्पर्य, किंतु मोटी बुद्धि का अर्थ अलग होता है। इसलिए जो स्थूल बुद्धि है, स्थूल बुद्धि का मतलब इन विषयों स्थूल पदार्थों को ग्रहण करते करते हमारी बुद्धि भी स्थूल हुई है, उसका आदत स्थूल विषयों को ग्रहण करने का हुआ है, बुद्धि कोई स्थूल नहीं है। जैसा जिसका संग करता है उसका आदत वैसा ही हो जाती है, लोक में देखा जाता है, वैसा ही बुद्धि का संग हो गया स्थूल पदार्थों के साथ, अतः बुद्धि स्थूल पदार्थों को ही ग्रहण करते करते उसका स्वभाव हो गया। इसलिए हम लोग कहते स्थूल बुद्धि, मोटी बुद्धि करके। अभी उस साधक को उस परमात्मा की ओर ले जाना है, वो कैसा जाएगा? इसलिए उस परमात्मा का जो दूसरा स्थूल रूप है, विग्रह है, उसको आश्रय करके। देखिए, विग्रह है वो भगवान नहीं है, मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है तो मूर्ति में भी है। तो इसलिए उस मूर्ति को आलंबन करके, विग्रह को आलंबन करके उस तत्व के ओर भी आप जा सकते हैं। इसलिए भगवान का दूसरा स्थूल स्वरूप विग्रह माना है। और थोड़ा उससे भी, इसकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हो गई, बिल्कुल मोटी नहीं, उसके लिए तीसरा विग्रह माना है वहां ज्योति अथवा बिंदु। जैसा योगी लोग है बिंदु का ध्यान करते हैं, ये भी परमात्मा का स्थूल स्वरूप माना है, अथवा ज्योति का चिंतन करते हैं, चाहे तो ज्योति हो अथवा बिंदु का चिंतन भी स्थूल है। योगी लोग जो ध्यान करते हैं ये भी परमात्मा का स्वरूप है। चौथा है, उससे भी थोड़ा सूक्ष्म है, व्यापिनी अथवा आकाश। ये आकाश है ये भी परमात्मा का स्थूल स्वरूप माना है। आकाश भी एक नहीं है, तीन आकाश होते हैं, आगम शास्त्र में बता दिया है। भूताकाश है, चित्ताकाश है, चिदाकाश है। हमारे जो कंठ तक है, विशुद्ध चक्र है, वहां तक पांचवा जो चक्र है, मूलाधार से प्रारंभ होता है, तो पंचम चक्र है वहां भूताकाश है, क्योंकि नीचे से एक एक चक्र है, पांच मतलब पांच तत्व को लेकर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अग्नि को लेकर। तो उसके बाद कंठ में जो भूताकाश मानते हैं, वहां से लेकर जो आज्ञा चक्र है, कंठ से लेकर आज्ञा चक्र तक, वहां चित्ताकाश कहते, हमारा चित्त विशेष रूप से वहां संचरण करता रहता। और आज्ञा चक्र से ऊपर जो है वो चिदाकाश है, चैतन्य स्वरूप मानते हैं। वो जो चिदाकाश है वो परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, स्थूल नहीं। तो इसीलिए यहां परमात्मा का जो चौथा है आकाश अथवा व्यापिनी, ये स्थूल में। पांचवा है वहां शब्द माना है, नाद अथवा शब्द। कुछ लोग नाद के उपासना करते, संगीत वाले नादोपासना कहते। ये जो संगीतज्ञ है वो नाद के उपासना करते, अथवा शब्द के उपासना करने वाले भी हैं, चाहे तो नाद हो अथवा शब्द हो, ये भी परमात्मा का स्थूल स्वरूप है, पांचवा माना है। और छठवा है मंत्र, ये मंत्र भी परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। तो इस प्रकार यहां भुवन है, विग्रह है, ज्योति है, आकाश है, शब्द है और मंत्र, ये स्थूल शरीर है परमात्मा का। इनके द्वारा आप सूक्ष्म के ओर जा सकते हैं, इसलिए यहां बता रहे हैं श्रुति, सृष्टि को इसलिए बता रहे भुवनों का। इन भुवनों को आश्रय करते हुए अब धीरे धीरे उस भुवनों का जो कर्ता है उसके ओर ले जा रहे। न तो यहां जो भगवान ने सृष्टि की ये प्रवृत्ति है, जो सृष्टि कर रहे हैं प्रकार की प्रवृत्ति है, तो भगवान क्यों प्रवृत्त हो रहे? प्रवृत्ति तो बंधन का कारण माना है शास्त्र में, निवृत्ति ही मोक्ष का कारण माना है। तो यहां सृष्टि करके भगवान प्रवृत्त हो रहे, तो इसलिए प्रवृत्ति बंधन का ही कारण ऐसी बात नहीं है। ये प्रवृत्ति किनसे हो रही ये मुख्य है, व्यक्ति प्रदान है। जैसा कोई अच्छी वस्तु भी खराब व्यक्ति से मिलने से वहां दोष माना जाता है, और खराब वस्तु भी योग्य व्यक्ति के पास मिलने से वह गुण माना जाता है। इसलिए कहा दिया है अयुक्तम स्वामिनायुक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। जो अयुक्त है अर्थात अयुक्त का मतलब जो अनुचित भी हो, युक्तस्य भूषणम, जो युक्त है योग्य है उसका भूषण माना जाता है। समर्थ को क्या दोष है, इसलिए कहा अयुक्तम स्वामिनः युक्तम और युक्तम नीचस्य दूषणम। है तो उचित है, युक्त भी है, किंतु दुष्ट के हाथ में गए तो वह दूषण बन जाता है। वह दृष्टांत दे रहे अमृतम राहवे मृत्यु। देखिए अमृत है क्या, योग्य है, किंतु राहु ने पी लिया, वही अमृत उसके मृत्यु का कारण बन गया, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के पास गया। विषम शंकर भूषणम, शंकर जी ने गरल पी लिया विष और नीलकंठ बन गए। इसलिए जो अयुक्त है कोई भी पदार्थ, जो समर्थ के लिए कोई दोष नहीं माना जाता है, और कितना भी अच्छा वस्तु हो और जो दुष्ट है उसके लिए मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए अयुक्तम स्वामिना युक्तम, युक्तम नीचस्य दूषणम, अमृतम राहवे मृत्यु, विषम शंकर भूषणम। वैसे ही जो प्रवृत्ति है, किसकी प्रवृत्ति देखना चाहिए, तो प्रवृत्ति ही बंधन का कारण है ऐसी बात नहीं है। इसलिए वहां कहा दिया है शास्त्र में, निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिर उपजायते, प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फलप्रद। मान दीजिए कोई मूढ़ व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, अविवेकी है, विचार नहीं है, वो निवृत्त हो रहे। जैसा मान लीजिए कोई मूर्ख व्यक्ति है बिल्कुल, किसी महात्मा ने कहा देखो तुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए तुझे कर्म करना है, सत्कर्म करो। उन्होंने सोचा ये कर्म करने से क्या मिलेगा, निवृत्त हो गया, बेकार है, परिश्रम मात्र होगा, निवृत्त तो हो गया, वो स्वाध्याय से निवृत्त हो गया, सत्संग से भी निवृत्त हो गया, निवृत्त तो हो रहे। निवृत्त क्यों हो रहे, आलस्य प्रमाद के द्वारा। इसलिए वहां निवृत्तिरपि मूढस्य, मूर्ख व्यक्ति की जो निवृत्ति है वो प्रवृत्ति रूप जायते, वो प्रवृत्ति ही मानी जाती। और प्रवृत्तिरपि धीरस्य, जो धीर पुरुष है अर्थात विवेकी, धीर का मतलब धैर्यशाली अर्थ नहीं, लोक में कहते जो धैर्यवान है उसको धीर कहते। धी का मतलब है बुद्धि, धीम बुद्धिम एरयति प्रेरयति। तो बुद्धि के ऊपर जो शासन करता है, बुद्धि को अपने वश में रखता है, वही धीर है। और बुद्धि जिसके ऊपर शासन कर रहे है वो भीरु माना है। इसलिए यहां धीर का मतलब है अपना बुद्धि को वश में किया, धीम एरयति प्रेरयति, इसलिए धीर है। अर्थात एक प्रकार से वो परतंत्र है। लोक में कहते महाराज मैं स्वतंत्र हूं, किसी का मैं स्वतंत्र हूं, जो स्वतंत्र बोल रहे हैं सबसे बड़ा वो परतंत्र है। क्यों परतंत्र, मन के अधीन हो गया, बुद्धि के अधीन हो गया, शरीर के अधीन हो गया, विषयों के अधीन हो गया, इतने के अधीन हो रहे वो, तभी वो स्वतंत्र बोल रहे। ये स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता अलग है, स्वच्छंदता अलग है। हम लोग स्वच्छंद को ही स्वतंत्रता मान रहे। स्वच्छंद बोल तो स्वच्छंद, अपनी इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार चलना, ये स्वच्छंद है। स्वतंत्र बोल तो अपना ऋषियों ने जो बनाया हुआ तंत्र मतलब शास्त्र, उसके अनुसार चलना। तो अपने ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ जो तंत्र है उसके अनुसार चलते वो स्वतंत्रता है। इसलिए लोक में जो कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, वो स्वतंत्र नहीं है, इन सबके अधीन हो गया वो। उसको आप कैसे स्वतंत्र कह रहे? बुद्धि उसके ऊपर शासन कर रही, मन शासन कर रहे, इंद्रिया कर रहे, विषय कर रहे, तो स्वतंत्र कहां से होगा? सबसे बड़ा परतंत्र हो गया। और जो परतंत्र कहते हैं वो सबसे बड़ा स्वतंत्र है। गुरु के अधीन है, माता पिता के अधीन है, भले वो परतंत्र मान रहे, स्वतंत्र इसलिए है इंद्रिय के अधीन नहीं हुआ, विषय के अधीन नहीं हुआ, बुद्धि के अधीन नहीं हुआ और शरीर के अधीन नहीं हुआ, तो वही स्वतंत्र है। तो इसलिए जैसा जो विद्वान है धीर पुरुष है, प्रवृत्तिरपि धीरस्य, धीर का मतलब बुद्धि को जो वश में किया है, अर्थात बुद्धि का वश में नहीं है वो, ऐसा जो पुरुष है उसकी जो प्रवृत्ति भी निवृत्ति फलप्रदा, वो निवृत्ति ही मानी जाती। इसलिए यहां परमात्मा जो सृष्टि कर रहे, भले ही प्रवृत्ति जैसा दिख रही किंतु ये निवृत्ति के ओर ले जा रहे। जो साधक है, जिज्ञासु है, उसको धीरे धीरे निवृत्ति के ओर ले जा रहे। अभी नहीं बताया था मैंने, जाना तो वहां सूक्ष्म के तरफ से, तो सूक्ष्म तत्व के ओर जाने के लिए हमारी बुद्धि भी अर्थात मन भी सूक्ष्म होना चाहिए। इसलिए उपनिषद में कहा दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, अत्यंत जो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही देख सकते। तो इसलिए यहां सूक्ष्म बुद्धि के ओर ले जाने के लिए भगवान का स्थूल रूप का निरूपण किया, छह बताया मैंने, चाहे तो भुवन रूप हो, विग्रह रूप हो, अथवा ज्योति रूप हो, अथवा आकाश रूप हो, अथवा शब्द हो, अथवा मंत्र, ये स्थूल है। इन स्थूलों में सबसे पहले परमात्मा ने 14 भुवनों को बना दिया, ये प्रवृत्ति भी निवृत्ति के लिए। उसके बाद उन्होंने विराट को बना दिया और विराट बनाने के बाद इंद्रिया है, गोलक है और अभिमानी देवता, उन देवताओं को बनाकर इस संसार में उन्होंने गिरा दिया, अर्थात ये संसार सागर में डाल दिया। ये संसार का क्या स्वरूप है कल हम विचार कर रहे थे। भगवान वाच्यकार ने बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा वर्णन किया उस संसार का जो स्वरूप है। तो यहां तक हम लोगों ने कल विचार किया था, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति और उसके बाद जल कौन है संसार में, ये दुख ही जल है, और जो मगरमच्छ इसमें कौन है बड़े बड़े, उसके बाद उसका स्वरूप भी बता दिया। उसके बाद यहां बता रहे ये जो जिस प्रकार समुद्र में पवन उत्पन्न होता है, आंधी आ जाती तूफान आता है, वैसे ही यहां संसार और समुद्र में कौन है बता रहे, ये तृष्णा है। ये जो तृष्णा है, पांच विषयों की जो तृष्णा है, यही पवन है। जैसा समुद्र में जो आंधी उत्पन्न होती है ये पवन के द्वारा, हवा का दबाव पड़ता है तभी उसमें तूफान आ जाता, वैसे ही यह जो पांच इंद्रियों का जो विषय है, पहले भी एक दिन ने बताया था मैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचा, एक प्रमादी सकतम न सेव्यते यसेव्यते पंचभिरेव पंचा। ये पांच विषय है, यही तृष्णा रूप पवन से विक्षोभ कर रहे, क्षोभ उत्पन्न कर रहे, और उसमें उठे हुए तरंग कौन है? तृष्णा हो गई हवा, और इस हवा से उठे हुए तरंग है भगवान भाष्यकार जी बता रहे अनर्थ रूप है। ये अनर्थ ही क्या है? तरंग है।